नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जया मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके।
तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 4 अध्याय 25 और इस श्लोक संख्या 38 38 है ना।
कानो त्वदन्यं रमये कानो त्वदन्यं रमये हरतिज्ञमको विदं हरतिज्ञमको विदं असंपराया विमुखं असंपराया विमुखं स्वस्तं विदं पशु स्वस्तन विदं पशु कं नो त्वदन्यं रमये हरतिज्ञं कोविदं असंपराया विमुखं स्वस्तन विदं पशु स्वस्तन विदं पशु।
शब्दार्थ कम किससे नु तब त्वात तुम्हारी अपेक्षा अन्यम अन्य रमये मैं भोग करूंगी ही निश्चय ही अर्तिज्ञम काम सुख को जानने वाला अको विदं अतः मूर्ख असंपराया अगले जीवन के ज्ञान से रहित अभिमुखं आगे देखते हुए अस्वस्तन विदुं जो यह नहीं जानता कि आगे क्या हो रहा है पशु पशु तुल्य। अनुवाद और तात्पर्य अभेजनार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, भला में अन्यों के साथ कैसे रमण करने की अपेक्षा कर सकती हूँ, क्योंकि न तो उन्हें रति का ज्ञान है न वे जीवित अवस्था में अथवा मरने के बाद इस जीवन का भोग करना जानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पशु तुल्य हैं क्योंकि वे इंद्रिय भोग की क्रिया को न इस जीवन में और न ही मृत्यु के उपरांत जानते हैं। तात्पर्य चूंकि जीवों की 84 लाख योनियां हैं अतः जीवन की परिस्थितियाँ भी अनेक हैं। जीवन की निम्न कोटियाँ हैं जिनमें निम्न कोटियों में पौधों में काम की कोई व्यवस्था नहीं रहती, किंतु उच्चतर कोटियों में यथा पक्षी तथा मधुमक्खियों में काम होता है। फिर भी कीड़े मकोड़े और पशु विषयी जीवन को भोगना नहीं जानते, किंतु मनुष्य को पूरा पूरा ज्ञान रहता है कि किस प्रकार रत्ती सुख उठाया जाए। दरअसल ऐसे अनेक तथाकथित ज्ञानी हैं जो विषयी जीवन भोगने का निर्देश देते हैं। यहाँ तक कि कामशास्त्र नामक एक विज्ञान भी है जो काम विज्ञान कहते हैं। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ तथा सन्यासी जैसे आश्रम भी हैं। इनमें से केवल गृहस्थाश्रम में ही विषयी जीवन पाया जाता है। ब्रह्मचारी को काम की अनुमति नहीं है, वानप्रस्थी स्वेच्छा से व्रत होता है और सन्यासी तो पूर्णतः व्रत रहता ही है। कर्मी लोग ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ अथवा सन्यास जीवन नहीं बिताते, क्योंकि उन्हें गृहस्थ जीवन अत्यंत प्रिय है। दूसरे शब्दों में मनुष्य भौतिकता के प्रति अत्यधिक उन्मुख रहते हैं। वे गृहस्थ जीवन इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें काम की छूट है। वे सोचते हैं कि अन्य आश्रम पशु जीवन से हे हैं, मतलब इस पशुओं से भी हैं। जो लोग इंद्रिय तृप्ति नहीं करते वो पशुओं से भी गिरे हुए हैं, क्योंकि पशुओं में मैथुन तो होता है, जबकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी इनसे पूर्णतः विरक्त रहते हैं। फलतः कर्मी लोग आध्यात्मिक जीवन के इस आश्रमों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं। साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य दिवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रशभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्यते सतारिणि जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादे गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरभो अविनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि भूतैरमहद्वीमां पुरा विभो निरमायसे ते यदमुष्य पुरुष पुंक्ते गुणान षोडशषोडशात्मकं सोऽलंकृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलंकृशिष्ट भगवान् वचांसि मे आराध्यौ भगवान् व्रजे सतनय तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रीमा पुमार्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न परः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः अरे कृष्णा। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन, प्रसंग तो राजा पुरंजनों के गुणों का वर्णन है लेकिन पुरंजनी के गुणों का ज्यादा वर्णन यहां पर हो रहा है। तो जैसे हम सुन रहे हैं किस प्रकार महाराज पुरंजन जब पुरंजनी से अनेक प्रकार की प्रणय की याचना किए और सुंदर सुंदर प्रशंसा रूपी स्थितियों के पुष्प जब उनके चरणों में समर्पित किए तो पुरंजनी भी उनकी उसकी इस प्रकार प्रशंसा से उनकी इस प्रकार की स्थितियों से अपने को समान न सकी और उसने अपने हृदय रूपी गुहा के जो किवाड़ थे पुरंजन के लिए हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए और इस प्रकार पुरंजन उस पुरंजनी के गृह में बैठ करके और पूरी तरह से उसका जो घर था नौ द्वारों का बना हुआ और उसको उपभोग करने लगा। वास्तविकता तो यह है ये जो मनुष्य शरीर है भोगों के लिए नहीं है। यदि भोगों के लिए होता तो भगवान ऋषभदेव जिनके 100 पुत्र हैं और क्षत्रिय भी हैं, क्षत्रियों को तो जो है राजा होते हैं तो भोग विलास ही होते हैं, तो उनको जो है इस प्रकार का उपदेश कर सकते थे, अपने पुत्रों को समझा सकते थे। लेकिन भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को भोगों के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं और स्पष्ट बोलते हैं कि नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अरहते विडबुजाये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वं सुद्धयेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंत। संसार में तुम सुख चाहते हो तो वास्तव में सुख संसार में नहीं है, संसार की वस्तुओं में सुख नहीं है। ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, आत्मा जिस सुख की चाह रखती है, जिस सुख की कामना करती है, वो संसार के विषयों में प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए ना अयम देहो देह भाजाम नरलोके, इस नरलोक में इस मनुष्य शरीर में जो शरीर प्राप्त हुआ है, हमें इतना सुंदर शरीर मिला है, ये बड़े ही पुण्यों का फल है। पुण्यों के फलों से कोई मनुष्य शरीर में प्राप्त होता, मनुष्य शरीर को प्राप्त होता, नहीं तो कुत्ते भी बन सकते थे, है कि नहीं? वो भी तो शरीर है। सुअर बन सकते थे, गधा बन सकते थे, क्या नहीं बन सकते थे। लेकिन वो पुण्यों का फल नहीं है, वो पुण्यों से नहीं मिल रहा है, वो उनके पापों का फल है। लेकिन जो मनुष्य शरीर है ये किसका फल है? पुण्यों का फल है। तो इसलिए ना अयम, इस शरीर का प्रयोग कभी भी नहीं करना है। किसके लिए? कष्टान कामान अरहते बिडभुजाये, ये बिडभुजा जो सूकर है इतना कष्ट सह करके, इतना मेहनत करके, 2400 घंटे दिन रात एक करके बड़ी मेहनत से जिस सुख को अर्जित करते हैं हम, ये सुख बिड भुजाए सुअर कुकरों को बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बोलो हरे कृष्णा। जैसे नींद में कितना सुख है, एक नहीं, इसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, न बेड की जरूरत है, न किसी चीज के लिए, जहां बिठा दो वहीं नींद चालू, है कि नहीं? इसके लिए कोई प्रयास करता है कि भाई नींद आओ, कुछ बैठ करके दो चार श्लोक बोले हो, स्तुति की, माला जपियो, नींद आओ नींद आओ नींद आओ, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, बड़ी आसानी से कहीं भी जो है। तो इसलिए संसार के जो सुख है, ऋषभदेव भगवान बताते हैं कि मेरे पुत्रों तुम कभी भी इन भोगों के लिए प्रयास मत करो। क्या करें पिताजी? फिर मान लीजिए प्रश्न कर सकते हैं कि ठीक है नहीं करेंगे हम, तो क्या करना चाहिए? तो तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, हे मेरे पुत्रों तुम क्या करो, कष्ट उठा करके भोगों को अर्जित करना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। कष्ट तो उठाना है, क्यों? किसी भी संसार की कोई भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतना आसानी तो है नहीं कि हाथ बढ़ाओ पट से नहीं हमने प्राप्त कर ले। जैसे यहां भी देख रहे हैं पुरंजनी को प्राप्त करने में उसने अपनी एड़ी चोटी का बल लगा दिया, हालांकि उसको फल तो मिला लेकिन उसने प्रयास बहुत किया। लेकिन ये प्रयास ठीक है, वो तो अभी अपनी सफलता समझ रहा है, लेकिन वास्तव में ये सफलता कहलाएगी? बोलो, ये सफलता नहीं है। संसार की किसी वस्तु को अर्जित कर लेना, संसार के किसी विषय को अर्जित कर लेना,
ये कोई सफलता नहीं है। हाँ, यदि किसी भगवान को प्रसन्न कर लेता, भगवान उसके सामने रीज करके सामने आ जाते, तब ये सफलता कहलाती। लेकिन उसने जो है पुरंजनी के लिए इतना सारा प्रयास किया, इतनी सारी मेहनत की, हो सकता है कि उसके भाग्य में तो बिना मेहनत के भी मिल सकती थी वो। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती उसे, क्योंकि लिखा है मुकद्दर में वो ही मिलेगा, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। जब भाग्य में नहीं है तो कितना भी मेहनत कर लो। बहुत से जो है भक्तगण जो है यहां से आते हैं, घरों से आते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, लेकिन शुरू से उनकी प्लानिंग है जी गृहस्थ जीवन में जाएंगे, और शुरू से वो लग जाते हैं इसके लिए, है कि नहीं। और ये होता है कि अंत तक बुढ़ापा आ जाता है लेकिन कुछ भी उनको हासिल नहीं होता, ये देखा जाता है। और बहुत सों को जो है चलते फिरते मिल जाते हैं। तो इसलिए भगवान ऋषभदेव जो हैं, चूंकि भगवान हैं, भगवान के एक अवतार हैं, भगवत हैं, स्वयं भगवान हैं, तो वो जो बात कह रहे हैं उस पर हमें ज्यादा गौर देना चाहिए। तो इस चीज के लिए वो स्पष्ट मना कर रहे हैं, और वो भी अपने पुत्रों को मना कर रहे हैं। कोई भी वस्तु जब अपने पुत्रों को बताई जा रही, कोई भी बात जब अपने पुत्रों को बताई जाती है तो उसमें कुछ ज्यादा ममता रहती है, कुछ ज्यादा विशेष प्रेम रहता है, कुछ ज्यादा कुछ देने का भाव रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? यही बात जो है, अब जैसे जो है व्यास जी ने कई सारे ग्रंथों की, पुराणों की रचना कर दी, और अंत में श्रीमद् भागवत की रचना की। लेकिन उन्होंने प्राणों के उपदेश तो अन्य अन्य ऋषियों के लिए दे दिए, इतिहास पुराणों के बारे में तो बता दिया, लेकिन भागवत के बारे में उन्होंने अन्य ऋषियों को चयन नहीं किया। इसके लिए उन्होंने किसको चयन किया? अपने ही पुत्र का चयन किया। तो इसलिए ये बात विशेष जो है हमें शिक्षा लेने वाली बात होती है कि ऋषभदेव भगवान जो है अपने पुत्रों से स्पष्ट मना करते हैं। तो क्या बोलते हैं, क्या करना है? तो तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं, हे मेरे पुत्रो, ये न सत्वं, जो सत्व है, जो भगवान है, उनके द्वारा जो प्राप्त होने वाला जो सुख है, क्योंकि तुम्हें सुख ही चाहिए, इस संसार में हर व्यक्ति सुख की ही खोज कर रहा है, तो ठीक है सुख मिलेगा, लेकिन प्रॉपर स्रोत से सुख लो। यदि उससे हम स्रोत ग्रहण करेंगे, यदि उससे हम सुख ग्रहण करेंगे, तो इस संसार का जो सुख है वो एक बूंद के समान है। लेकिन ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, यदि भगवान को हमने प्रसन्न कर लिया, भगवान हमारी सेवा से रिज गए, तो उनसे जो मिलने वाला जो सुख है वो कैसा होगा? तो अनंतम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, अर्थात ये अनंत 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 जो है सुख मिलेगा भगवान से, मतलब प्रसन्न होकर के जो सुख मिलेगा। इसलिए क्या करो, कष्ट उठाना ही है तो इन भोगों के लिए कष्ट उठाओ। कष्ट किसके लिए उठाना है? तो भगवान के लिए उठाओ, भगवान की प्रसन्नता के लिए उठाओ। जप करो, कीर्तन करो, प्रचार प्रसार करो। अभी जो है प्रचार की बहुत जरूरत है, नावट में भक्त बहुत कम है जो प्रचार प्रसार कर रहा है, तब जाओ यहाँ से, क्या करना है, प्रचार प्रसार करो। तो तपो, ये भी कष्ट है, इतना इजी नहीं है। सर्दी गर्मी बरसात में बाहर जाना है कि नहीं, जा करके वहाँ जो है जाना, कहीं रहने का ठीक से व्यवस्था नहीं। और हमने तो देखा है कि प्रचार में हम जाते हैं रात्रि के समय, शायद आप लोग अनुभव किए होंगे जो प्रचारक हैं, रात्रि के समय जब बस खड़ी होगी या प्रचार के समय बस खड़ी होगी, या तो कहीं जो है कचड़े का ढेर होगा, या जो है इतनी गंदी जगह होगी जहाँ जो है मलमूत्र का जो है त्याग स्थान होगा, वो वहीं जाके बस खड़ी होती है, ये अनुभव किया गया है, समझ रहे ना। और रात्रि को जो है कहाँ जा करके, एक बार तो जो है हम जो है जा रहे थे मायापुर के लिए जा रहे थे, कम से कम 20 भक्त थे, 11 खींचे बस खींचे जा रहे थे, 11-12 बजे भाई सोना है, सोना है, कहाँ सोना है, कोई मंदिर देख के सो जाओ, तो रात्रि को एक मंदिर दिखाई दिया तो भक्तों ने चटाई उतार उतार करके सो गए। अब सुबह उठे तो देख रहे हैं कि जो खून का वो बह रहे, खून की जगह जगह दाग पड़े हैं, तो मालूम चला वो काली का मंदिर था। वो सुबह मालूम चला कि बकरा जो है आ रहे हैं। हमने बोला भाई किसके आ रहे हैं, बोला यहाँ तो बलि दी जाती है महाराज। भाई दो यहाँ से ठीक है, हम चले यहाँ से हम लोग। तो ये देखा जाता है, कष्ट तो है, आप इतना इजी नहीं है संसार में। क्या नाम है, एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी जो है एक उदाहरण दे रहे थे। उनके पास में कोई आया, एक भक्त आया, बोला महाराज दीक्षा चाहिए। बोला दीक्षा चाहिए, तो बोला हमारे यहाँ तो दीक्षा ऐसे नहीं देते हैं, हमारे यहाँ कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करना होता है तब हम दीक्षा देते हैं। तब उसने कहा हाँ महाराज हम जानते हैं, इस्कॉन तो सबको छुड़ा देता है, उनके नियम क्या है, संसार के जो है सारी वस्तुओं को छुड़ा देता है, खाने पीने को छुड़ा दिया, रहन सहन भी छुड़ा देता है। हालांकि महाराज मैं पहले से दीक्षा ले चुका हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आपसे ले रहा हूँ, और ऑलरेडी मैं दूसरे गुरु बना चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है दूसरे गुरु बना चुके हैं, तो उन्होंने क्या कहा है आपसे, तो हमारे जो पहले गुरु थे उन्होंने बताया कि ठीक है तुम मांस खाना चाहते हो छोड़ना चाहते हो, तो मैंने कहा कि नहीं गुरु जी मांस तो मैं नहीं छोड़ सकता। ठीक है तो तुझे काली का मंत्र दे देते हैं, और काली का मंत्र दे दिया उन्होंने। तो ऐसे ही आप कुछ हमें बताओ, जैसे कोई छोड़ने बोने की बात मत करो, हमें छोड़ना मुश्किल है। तो सत्यता यह है कि तपो दिव्यम, यदि तपस्या नहीं करेंगे इस संसार में, देखा जाता है कि जिन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया है इतना इजली नहीं मिले जैसे हम सोच लेते हैं। अपने गोस्वामियों का उदाहरण देखो, गोस्वामी जो हैं इस वृंदावन के अंदर कितना विरक्त में रहते थे, केवल दो कपड़े होते थे, एक बहिर्वास नीचे का, एक ऊपर का, बस उसी को धोना है, ऊपर के को नीचे पहन लेते धो करके, और धो करके सुखा करके उसको ऊपर डाल लेते थे है? और रहने का कोई जो है नाम तो लिखे हैं सुदामा कुटी, ए कुटी, लेकिन जब उन कुटियों में प्रवेश करते तो ऐसे लगता है जैसे किसी महल में घुस रहे हैं। देखा जाता है भजन कुटी, अब भजन कुटी में जाओ तो आपको कुटिया तो कहीं नहीं मिलेगी, सब लिखा है एसी रूम है, इसका जो है चार्ज इतना, इसका चार्ज है इतना, आगे लिखा है भजन कुटी। तो जिन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया है, अब गोस्वामियों से देखो हम कैसे उदाहरण सिद्धांत ले सकते हैं, उन्होंने जो है इसी वृंदावन में रोते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, ए राधे ब्रज देवी के चललिते ए नंद सुनम कुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद पुतले कालिंदी बन्ने कुतः गोसंतावित सर्वतौ ब्रजपुरे खेदेर महाविहलौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। तो जो अपने जो है गोस्वामी लोग थे इसी वृंदावन में चिल्लाते रहते थे, हे राधे ब्रज देव के चललते हे नंद सुनौ कुतः, हे श्रीमती राधा रानी, हे ब्रज की देवी, हे नंद पुत्र आप कहाँ हो, इस पनीर की सब्जी में देखूं या इस रसमलाई में देखूं, कहाँ मैं आपको ढूंढूं। जिस दिन फीस्ट का अनाउंसमेंट हो जाता है भक्तों में थोड़ा उत्साह और बढ़ जाता है, चलो आ तो फीट कम करो फीस्ट है। लेकिन जो है ब्रजवासी क्या नाम अपने गोस्वामी हैं जितने भी आचार्य हुए उन्होंने भूख लगे तो मांगन जाऊं ब्रजवासी ने के टुकड़े पाऊं, मतलब भूख लगे तो मांगन जाऊं, अर्थात कभी भी कुकिंग नहीं या कहीं नहीं किया उन्होंने, कभी भी चूल्हा नहीं जलाया, जब भी भूख लगती कमंडल उठा करके जो है दो चार घरों से मांग के लेके आते थे और उसी से जो है अपना जो है जीवन चलाते थे। तो इस प्रकार उन्होंने जो है इस ब्रज के अंदर सिद्धांत स्थापित किया है, हम सभी के लिए एक आदर्श स्थापित किया है कि भगवान को जो हम सब लक्ष्य लेकर के बैठे हैं कैसे वो प्राप्त हो सकते, तो उस लक्ष्य को हमें जो है ध्यान में रखना चाहिए, उसको ध्यान में रखना होगा। तो इसलिए तो बोलते कि तपो दिव्यम, यदि भगवान के लिए हम कष्ट उठाएंगे इस जीवन में तो फिर हमें सुख मिलेगा, अनंत सुखम, जिसके लिए हमारी चाह है। और यदि विषयों के लिए हम कष्ट उठाएंगे तो विषयों का न भोग काम कामान, जैसे बताया गया है क्या नाम है याति महाराज के प्रसंग में जैसे बताते हैं, उन्होंने जो है हजारों वर्षों तक क्या किया, भोग विलास किए याति महाराज ने, हजार वर्ष तक भोग करते रहे बराबर, यहां तक उनको बुढ़ापा भी मिल गया लेकिन फिर भी अपने पुत्र की जवानी लेकर के फिर वो भोग करते रहे। अंत में जब भोगों से उनकी बिल्कुल भी तृप्ति नहीं और बढ़ते बढ़ते गए तो फिर अपना जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना अनुभव हम सभी के लिए बता रहे हैं। तो बताते हैं, न जातु कामह कामना उपयोगे न सम्यति हविषा कृष्ण वर्तमैव भूय एव अभिपद्यते। न जातु कामह कामान उपभोगे न सम्यति, कामान उपभोगे न सम्यते, इंद्रिय तृप्तियों को जितना भोगा जाए, आंख जो है कमजोर हो जाती है तो चश्मा लगा लेते हैं, उसमें भी यदि समस्या आती है देखने में तो फिर पुतलियां उठा लेते हैं, ऐसे करते रहते, देखे हमने किसी को देखने के लिए तो उठाते हैं, कहीं से निकल पड़े थोड़ी ज्योति तो हम देख लूं, इस रूप को देख लो। कान जो है थोड़ा सा भी कोई अच्छा कोई नई फिल्म का कोई अच्छा संगीत हो तो कान खिंचे चले जाते, कहां से आ गई आवाज, देखा जाता है। तो न जातु काम कामान भोगेन सम्यति, तो कामान अनेक अनेक प्रकार की जो कामना है भोगों के द्वारा न सम्यते, एक कामना को पूरा करेंगे इसके तुरंत बाद दूसरी कामना क्या हो जाएगी, तुरंत आकर के प्रकट हो जाएगी। न सम्यति अर्थात भोगों से कितना भी भोग किया जाए, कितना भी भोग किया जाए लेकिन न सम्यति, उसका उदाहरण दे रहे हैं, हविषा कृष्ण वर्तमैव भूय एव अभिपद्यते। हविषा एव कृष्ण वर्तम एव, जैसे यज्ञ होती है यज्ञ के अंदर घी डालते हैं तो घी डालने से यज्ञ की अग्नि क्या होती है, वर्तमैव और क्या होती है, प्रज्वलित होती जाती है, बंद नहीं होती है, बुझती नहीं है और बढ़ती है। तो इसलिए इन कामनाओं को भोगने से हमारी जो इच्छा है वो पूर्ति हो जाए ये बिल्कुल असंभव है। इसलिए बुद्धिमान यही है कि इन कामनाओं का जो है परित्याग करना चाहिए, क्योंकि यही कामना यही भोग, क्योंकि भोग की जो प्रवृत्ति है विषयों की प्रवृत्ति वो काम से उत्पन्न होती है। विषयी जीवन का मतलब होता है कामना से उत्पन्न जीवन, भोगों की चाह का जीवन, और भोगों की चाह का ये जीवन है ये विषयी जीवन कहलाता है, जो किसका कारण बनता है, बंधन का कारण बनता है। इसलिए यहां पर जो है थोड़ा सा हम इस श्लोक पर चर्चा करते हैं, इसके शब्दों को देखते हैं क्या बोल रही है पुरंजनी। तो बोलती है, न कम नो त्वदन्यं रमये, तो पुरंजनी बोलती है कि का नो त्वत अन्यम रमये, त्वत अन्यम रमये का तो अर्थात मैं आपके अलावा और किसी दूसरे के साथ रमण करने की कभी सोच भी नहीं सकते। सरेंडर इसको बोलते हैं। बिल्कुल जो है और किसी दूसरे के प्रति बिल्कुल कोई इच्छा ही तक न उठे, मतलब सोच भी ना पाए, इसको बोलते हैं सरेंडर। तो पुरंजन ने फुली सरेंडर किया, क्योंकि पुरंजन ने भी तो फुली सरेंडर किया था इसके, इसलिए उसकी तरफ से भी पूरा जो है समर्पण हुआ है। इसलिए जो है उसको ढांढस बनाते हुए कहती है कि ना तू क्या है काम नु त्वत अन्यम रमय, मैं भला आपके अलावा और दूसरे के साथ रमण करने की कैसे सोच सकती हूं, क्यों नहीं सोच सकती भाई, क्या बात है। तो उसने दो विशेषण दिए, क्या है कि कोई भी जब स्त्री किसी के प्रति आकर्षित होती है, चाहे वो दो थर्ड क्लास का हो, चाहे वो किस कैसा भी कुरूप हो, लेकिन उसके अंदर एक तो पहले उसको सुंदरता दिखाई देती है। स्त्री जब किसी के प्रति आसक्त होती है तो पहला उसको क्या है, वो सुंदर लगता है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, फिर भी वो सुंदर ही होगा। और दूसरा है जो है उसकी उदारता दिखाई देती है उसको। उदारता क्या रहती है, हाँ भाई ये समय पे मेरे लिए कमाएगा गधे की तरह, फिर मेरे लिए गहने लाएगा, कपड़े लाएगा, अच्छा अच्छा खिलाएगा, मैं क्या करूंगी आराम से रहूंगी, ये सोचती है। और सबसे बड़ी सोच उसकी क्या रहती है, सबसे बड़ी वो सोचती है कि भाई इससे बड़ी उदारता क्या है, ये जीवन उसने मेरे लिए अर्पित कर दिया है, हालांकि जीवन था भगवान के भजन के लिए। जिस जीवन मनुष्य शरीर जो है अति अति शास्त्रों में वैदिक शास्त्रों के अंदर दुर्लभ जिसको कहा गया है, अब बताइए उससे बड़ी जो है उदारता क्या हो सकती है। वो जीवन जो भगवान के लिए था, भगवान को न दे करके जिसने मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है, तो भला इससे उदार और कौन हो सकता है, एक नहीं। ए है। अब ये गधा समझे ना समझे, लेकिन वो तो पूरा जो है बता रही है। न तो काम कामान भोगे न सम्यते, सारी जिंदगी गधे की तरह कमाएगा, चरणों में किसको समर्पित करेगा, मेरे प्रति समर्पित करेगा ही करेगा, कहां जाएगा भज करके, जाएगा कहां भज करके, नहीं करेगा तो फिर हालत खराब करती है उसके, फिर करना ही है, समर्पित होना ही है। तो ये उदारता उनके अंदर दिखाई, गधे की तरह कमाएगा, बैठी बैठी टीवी के सामने, एसी पंखा कोई चिंता नहीं, बेड पे बैठी बैठी, अरे अजी सुनती हो क्या है जी, थोड़ा पानी भर के लाओ, पति जो है दौड़ के गया गिलास भर करके दे दिया, खुद बैठी है आराम से। मैं आप लोग मतलब ये प्रसंग के अनुसार चल रहा है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन आप सभी तो भक्त हैं, भक्त तो इस बात को सब जानते हैं, सब भक्त तो इसलिए भक्तों को शिक्षा लेकर के जो इस प्रकार है उनको समझाना है। ये प्रसंग किसके लिए कहा जा रहा है, प्रसंग उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जो वास्तव में संसार में बिल्कुल गिरे हुए हैं, पतित हो चुके हैं, जिन्हें अपने जीवन की मतलब चिंता नहीं है कि जीवन जो है कितना और शेष बचा है, जीवन जो है कितना शेष बचा है, इस जीवन के से क्या करना चाहिए, इसके बारे में उनको कोई चिंता नहीं है। तो भक्तों को ये सारी चीजें समझ करके ऐसे व्यक्तियों को प्रस्तुत करना है, उनको समझाना है कि भाई जाग, अब तो उठ जा भाई। आजकल जो है जिनकी पूरी मति उसमें फंसी हुई है, हालांकि भक्तों को उनको समझाने भी बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि पुरंजनी जो है पुरंजनी बुद्धि को कहा जा रहा है, या पुरंजनी किस कौन है, बुद्धि है, और ये बुद्धि कैसी है, बिल्कुल भौतिकतावादी बुद्धि है। मतलब भौतिकतावादी का मतलब होता है जो भौतिकता में ही आदि हो चुकी है, केवल जो है ऐसा आराम के अलावा, भोग विलास के अलावा, खाने पीने सोने ऐस करने के अलावा, जिसको कुछ भी दिखाई नहीं देता वो बुद्धि है, ए पुरंजनी जो है। तो जब हम जो भक्त लोग जब इनके पास में जाते हैं, जो गृहस्थ क्या बोलते हैं, उन गृहस्थ जो फंसे हुए हैं जाल में उनको समझाते हैं, तो उनसे कहा कहते हैं कि भाई थोड़ा समझो, देखो ये गृहस्थ जीवन हालांकि अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि आप जिस प्रकार जो है पूरा जीवन इसी में लगा दो। क्या करना है जी, पहले जो है हो सकता है कोई ऐसे अनुकूल बात कहे तब तो हाँ मार देंगे, नहीं तो बोलते क्या करना है। तो बोलो देखो आप कभी हमारे मंदिर आए हैं क्या? बोला नहीं आए। अरे मंदिर आओ, ठीक है क्या करना होगा, मंगल आरती अटेंड करो। मंगल आरती कितने बजे? 4:30 बजे। 4:30 बजे असंभव। अरे चलो कोई बोलते 10 बजे होती, 9 बजे तक थोड़ा कुछ नहा धो के आ जाते हैं। 4:30 बजे तो हम जो है सोने के लिए जाते हैं, ठीक है जी। और क्या है, सोलह माला थोड़ा जप करो। सोलह माला जप ये तो मरने से भी बढ़ करके है। और उसको कहीं चार नियम बता दिए तब तो उसका हार्ट अटैक फेल। इस समझने वाली बात है, हालांकि इतना इजी नहीं है उन लोगों को समझाना। इसलिए ये जो है यहां पर जो चर्चा चल रही है, बिल्कुल यहां पर पुरंजनी जो है निवृत्ति मार्ग की पूरी निंदा कर रही है। आप देखो कैसे शब्द उपयोग कर रही है, भला मैं अन्यों के साथ कैसे रमण की अपेक्षा कर सकती हूं, क्योंकि न तो उन्हें रति का कोई ज्ञान है। इतने मूर्ख हैं ये, रति क्या होती है, काम सुख क्या होता है, इनको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। इनको समझाएं तो इनकी बुद्धि में जाएगा नहीं। और न वे जीवित अवस्था में अथवा मरने के बाद इस जीवन को भोग करना जानते हैं, न इस जीवन में और मरने के अलावा, क्योंकि उनका लक्ष्य ही नहीं है। जो जीवन वास्तव में जिसके लिए मिला है खाने पीने सोने के लिए, ये लोग इतने थर्ड क्लास के हैं। अरे पशु तो फिर भी ठीक है, वो तो सीजन के अनुसार जो है इन सारी चीज में आनंद लेते हैं, लेकिन ये तो इतने जो ब्रह्मचारी हैं तब वो तो इतने थर्ड क्लास के हैं, और उनसे ज्यादा थर्ड क्लास के हैं सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं जो। ये बोल रही है, देखो यहां बोल रही है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति पशु तुल्य हैं। पशु फिर भी ठीक है, प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि पशुओं से भी हे हैं, अर्थात इनकी जितनी निंदा की जाए, ब्रह्मचारियों की जितनी निंदा की जाए, वानप्रस्थी जो सन्यास चले, वानप्रस्थी जो बेचारे चलो उनको न कहे हो सकता है, लेकिन वान जो ब्रह्मचार्य से सन्यास में गए हैं उनको भी ऐड कर रही है यहाँ पर। बोलते हैं ये तो इतने क्लास थर्ड क्लास के हैं कि पशु फिर भी जो है कुछ काम आता है, लेकिन ये तो जो है उनसे भी गिरे भये हैं, क्योंकि वे इंद्रिय भोग की क्रिया को न तो इस जीवन में और ना ही मृत्यु के बाद उपरांत जानते हैं। पूरी तरह निंदा कर रही है किसके, निवृत्ति मार्ग की। तो ये जो इस प्रकार की जो बुद्धि है इसको बोलते हैं आसुरी बुद्धि। कौन सी बुद्धि बोलते हैं, ये आसुरी बुद्धि है, और ये निवृत्ति मार्ग है। ये पश्चिम का द्वार कहलाता है। कौन सा द्वार कहलाता है ये, आप आगे चलेंगे जो है अलग अलग द्वार हैं, कुछ पूर्व की तरफ है, कुछ पश्चिम की तरह, कुछ उत्तर की तरह, कुछ दक्षिण की तरह। तो ये जो मार्ग है जिसकी चर्चा यहां चल रही है, पश्चिम का द्वार है। और पश्चिम बोलते हैं किसको, पाश्चात्य जगत को बोलते हैं। पश्चिम किसको बोलते हैं, पाश्चात्य जगत को बोलते हैं। तो इसलिए जो पाश्चात्य जगत है ये बिल्कुल इनकी सभ्यता कैसी है, बिल्कुल आसुरी ही सभ्यता भरी हुई है। क्योंकि पश्चिम के जो लोग हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जो है इस बात को जो है बोला है कि पश्चिम के जो लोग हैं बोलते हैं, पश्चिमेरा लोकेरा सब मूल अनाचार, अर्थात जो पश्चिमी देश है, पश्चिम का मतलब जो पाश्चात्य जगत है, जो विदेश है, क्योंकि विदेश में विदेशों की बुद्धि क्या है, इसी प्रकार की बुद्धि होती है। इसलिए वो कैसे हैं, उनकी जो बुद्धि है चूंकि भौतिकता से ग्रस्त बुद्धि है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उनके लिए कोई नियम कानून धर्म, क्योंकि केवल एक आश्रम है जिसको गृहस्थाश्रम बोलते हैं, उसी में इसकी थोड़ी छूट दी गई है, वो भी धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत सब। जो धर्म के अनुकूल है अर्थात कृष्ण भावना भावित बच्चों की उत्पत्ति करने के लिए ये जो है ये दिया गया, केवल गृहस्थाश्रम बनाया गया और जो है इसमें और किसी भी प्रकार जो है इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं कि ये निरति मार जो है ये पुरंजनी की जो बुद्धि है या जो पुरंजनी जो बुद्धि है वो कैसी बुद्धि है, वो आसुरी बुद्धि है। आसुरी बुद्धि वाले जात्र कहाँ पाए जाते हैं, विदेशों में पाए जाते हैं, जहां जो है कोई भी नियम नहीं है, कोई भी कानून नहीं है। अब भारत में भी जो है कोई कम नहीं पड़ रहे हैं उनसे, जो है दौड़ में है, भारत पीछे नहीं है, पूरा पाश्चात्य देश को जो है अपनाया हुआ है। तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत हालांकि पुरंजनी निवृत्ति मार्ग की जो है निंदा कर रही है, लेकिन वास्तव में निवृत्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है। निवृत्ति मार्ग का मतलब होता है योग का मार्ग, भगवत प्राप्ति का मार्ग, और प्रवृत्ति का मार्ग होता है भोगों का मार्ग, दुखों का मार्ग और पतन का मार्ग। इसमें ये बात नहीं बताई जा रही कि ग्रस्तों की निंदा की जा रही है, ग्रस्तों की निंदा नहीं की जा रही, ग्रस्त उन लोगों की निंदा की जा रही है जिन्होंने ग्रस्त को ही, ग्रस्त जीवन को ही अपना सब कुछ समझ लिया है। इसलिए जो बुद्धि है हमारी पुरंजनी है, जो आसुरी बुद्धि है, अब क्या इसको बैलेंस में बनाना है, तो बैलेंस में बनाने के लिए क्या करना होगा, या तो इसके सरेंडर करो, नहीं तो फिर सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर जो है जैसे कभी कभी देखा जाता है, कभी कभी घर में पति पत्नी के विचार नहीं मिलते हैं तो फिर घर में क्या शांति रहती है, कलेश छाया रहता है। कर रहे यदि विचार नहीं मिल रहे हैं तो गृहस्त जीवन में क्या होता है, कलेश छाया रहता है। जब भी देखो जो है लठ और क्या बोलते हैं चांटे और गालियों की बौछारें चलती रहती है। तो इसलिए अब बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाने के लिए क्योंकि बुद्धि हमारी जो है कैसी है, पुरंजनी है, ये भौतिकता बुद्धि है, तो सरेंडर करना हो आपको, सरेंडर करने का मतलब गधा बनो आप, है पूरा गधा बन करके उनके साथ में रहो, घर में रहो, तो जो है क्या रहेगा, पुरंजनी प्रसन्न रहेगी, सुखी रहेगी, हाँ भाई इसने सरेंडर कर दिया। और जरा भी आपने आंख दिखाई उसको तो तुरंत जो है कोर्ट कचहरी की शरण लेगी, तुरंत बोलती है तलाक, अभी तलाक देती हूँ, अरे नहीं जी नहीं जी तलाक नहीं, बच्चों का क्या होगा, ये घर गृहस्थी इतनी अब की है जैसे तो नहीं है, मत आप इतना इजी नहीं है, या तो सरेंडर। इसलिए मोस्टली लोग सरेंडर कर ही देते हैं, उसको लांग करके जा नहीं पाते, सरेंडर करना ही है, क्योंकि उनको घर गृहस्थी देखनी है, बीवी बच्चों को देखना है, अपने अपनी इज्जत को देखना है, तो मोस्टली वो घरों में क्या करते हैं, बिल्कुल गैया की तरह रहते हैं, जहाँ खोलो वहाँ बांधो, वहाँ खोलो वहाँ बांधो, खिलाओ तो खिला दो, खा लेंगे पिलाए तो पी लेंगे, बिल्कुल गाय बन करके रहते हैं। ये उपाय ही है, और कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा, गाय बनना ही पड़ेगा उनको। तो इसलिए सिद्धांत के रूप में हमें क्या करना होगा, इस पुरंजनी बुद्धि से ऊपर उठना होगा। कैसे उठना होगा, तो हमें आध्यात्मिक बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। आध्यात्मिक बुद्धि कैसे प्राप्त होगी, तो कल परम पूज्य गौरनारायण महाराज जो है सत्संग बता रहे थे, शास्त्रों में ही बताया जाता है, गृहस्थों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते रहें, साधुओं की संगति करते रहें, उनसे सुनते रहें, बराबर उनके सुनेंगे बराबर उनसे, तो जो है इस प्रकार की जो पुरंजनी हमारी बुद्धि है, जो भौतिकता बुद्धि है, जो बिल्कुल जीवात्मा को आत्मा को इसमें फंसा करके रखती है, तो फिर उससे हम क्या होंगे, ऊपर आएंगे। जब तो ऊपर आएंगे तो उससे क्या होगा, फिर जो है हम इस शरीर से, इस शरीर जो है जीवात्मा के लिए, जीव जो है आत्मा है, और इसमें जो है भोग है वो ये शरीर है, नौ द्वारे का जो भोग करने के लिए है, और पुरंजनी है ये बुद्धि है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, जब बुद्धि हमारी ठीक से निर्णय लेगी, जब भगवान का भजन करेगी, थोड़ी शुद्धि होगी, अच्छा खा पी करके भगवत प्रसाद हम खा करके कीर्तन करके सत्संग सुन करके प्रचार प्रसार करेगी तो ठीक होगी, तो ठीक होगी तो ये सोचेगी भी अच्छा, तो मन से ऊपर बुद्धि है, तो इसलिए मन का काम है किसी चीज का संकल्प लेना, विकल इच्छा करना, ये सारा मन का काम है। तो जब अच्छी मति देगी तो मन भी फिर क्या करेगा, अच्छी बातों का चिंतन मनन करेगा, सोचेगा और क्रिया में लाएगा। इंद्रियाएं मन से, मन मन नीचे है मन से, तो मन जैसा शासन करेगा इंद्रियां पर वैसे ही कार्य करेंगे। तो यदि भौतिकतावादी बुद्धि से काम लेंगे तो इंद्रियां भौतिकता की तरफ प्रेरित होंगी, और जब आध्यात्मिक बुद्धि से काम लेंगे तो इंद्रियां भगवान की तरफ उन्मुख होंगी। तो इस प्रकार जो है जब भौतिक पुरंजनी के द्वारा संचालित रहेंगे तो ये हमारे पतन का कारण बनेगी, और जब आध्यात्मिक बुद्धि से ऊपर उठे बुद्धि के द्वारा चलेंगे तो फिर जो है इस भवबंधन से, इस भव सागर से क्या होंगे, हम जो है ऊपर उठेंगे और भगवत धाम जाने के जो है हम पात्र बन जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महाप्राण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, हरे कृष्णा।